नमस्कार भारत, आज है 1 अक्टूबर दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत पाक तनाव के बीच स्थगित हुई इस्लामाबाद में होने वाली सार्क देशों की बैठक। हिंसा की आशंका से सीमा क्षेत्र में घर बार छोड़ सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं लोग।
सर, मेरा खुद का 20 एकड़ जमीन पार के आगे है। ते हम आज सुबह गेट के पास गए थे तो हमको रोक दिया गया कि अभी 4-5 दिन गेट नहीं खुलेगा।
सीमा पर तनाव का असर फिल्म उद्योग पर भी। पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाने पर लगी रोक। भारत में बंटी है फिल्मकारों की राय।
रिएक्शन बहुत लॉजिकल और बहुत कोहेरेंट हो कि नहीं हो, मगर ये इसके पीछे जो इमोशन है उसे आपको समझना होगा।
होगी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीमा के दोनों ओर के गांव से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पलायन करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख सिनेमाघरों ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के सिनेमाघरों का कहना है कि वो पाकिस्तान सेना को समर्थन देने के लिए भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन रोक रहे हैं। इससे पहले भारतीय फिल्म निर्माताओं के समूह ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़कर जाना भी पड़ रहा है। भारत के नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने रूस के उन आरोपों को बेतुका बताया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका सीरिया में सक्रिय कट्टरपंथी जिहादी समूहों को बचा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने बीबीसी से कहा कि अमेरिका सीरिया में अलकायदा से जुड़े जबह फताल शाम समूह को उदार विद्रोही समूहों से अलग नहीं कर सका है। जबह फताल शाम समूह को पहले अल नुसर फ्रंट के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा है कि रूस ने सीरिया के लोगों के लिए हालात बेहद खराब कर दिए हैं। उन्होंने कहा, सच यह है कि रूस अगर चाहता तो बशार अल असद को अलेपो के लोगों पर अत्याचार करने से रोक सकता था। सच यह भी है कि मानवीय मदद पहुंचाने जा रहे काफिलों पर हमले पर रूस के लिए उंगलियों के निशान हैं। इस संकट में रूस के शामिल होने ने हालात और अधिक खराब कर दिए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 10 दिन पहले सीरिया में राहत सामग्री ले जा रहे काफिले पर हुए हमले के मामले में जांच बिठा दी है। बान की मून ने कहा है कि जांच पैनल की रिपोर्ट के बाद वे तय करेंगे कि क्या कदम उठाए जाने हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया के अलेपो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर रूस और सीरिया की बमबारी में बीते सप्ताह कम से कम 400 लोग मारे गए। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में पुलिस ने मंगलवार को एक शॉपिंग सेंटर में निहत्थे काले युवक की पुलिस के हाथों गोली मारकर मौत की घटना का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दो पुलिस अधिकारी युगांडा से आए प्रवासी अल्फ्रेड ओलांगो को रोकते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद एक अधिकारी ओलांगो पर गोली चला देते हैं। पुलिस का कहना है कि युवक ने अनियमित व्यवहार किया था, जबकि उसकी मां का कहना है कि वो मानसिक रूप से टूटा हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी, ना कि गोली की। ओलांगो की मौत के बाद इल्कखून शहर में प्रदर्शन हुए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क की बैठक स्थगित हो गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि सार्क सम्मेलन की नई तिथि का ऐलान वो जल्द ही करेगा। इससे पहले श्रीलंका भी उन 4 देशों में शामिल हो गया जो पाकिस्तान में होने वाली सार्क की बैठक का विरोध कर रहे हैं। दरअसल भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में चरमपंथी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। 2 दिन पहले भारत ने भी सीमा पार के चरमपंथी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, जिसमें कथित रूप से 30 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उड़ी हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की थी। दोनों देशों के बीच जारी तनाव का सबसे ज्यादा असर सीमा के करीब रहने वाले लोगों पर पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग लड़ाई या हिंसा की आशंका से सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। भारतीय पंजाब के सीमा क्षेत्र से रविंदर सिंह रॉबिन ने ये रिपोर्ट भेजी है।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा से लगे पंजाब के गांव में सतर्कता के चलते 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग सभी गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि दिन भर में सीमा पर रह रहे लोगों के पलायन में तो कमी आई, परंतु वहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलों में बढ़ोतरी भी हो गई है। हालांकि राज्य सरकार सीमा पर रहने वाले लोगों की मदद के दावे तो कर रही है, पर किसानों को अपने घर बाहर के साथ साथ अपनी खड़ी फसल की चिंता भी खाई जा रही है। बताया जाता है कि सिक्योरिटी के चलते BSF ने तार पार जाने वाले किसानों को अपनी जमीनों पर जाने के लिए मना कर दिया है। इसकी पुष्टि वल्टोहा विधानसभा के विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने की। BBC से बात करते हुए उनका कहना था,
तो ऐसे है जो साफ सटे हुए गाँव है वहाँ तो माहौल कुछ ऐसा है कि जो भारत सरकार की तरफ से लोगों को सूचित किया गया है कि हालात कुछ ऐसे हैं कि आप बॉर्डर से पीछे चले जाएं। चाहे बॉर्डर पर किसी तरह की कोई फौज नहीं लगी हुई, आर्मी नहीं लगी हुई, कोई जंग का माहौल नहीं है, लड़ाई का माहौल नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो भारत सरकार ने बॉर्डर के लोगों को, सरहदी लोगों को मैसेज दिया, उसका असर तो है, दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि भारत पाक सीमा पर कंटीली बाड़ लगी हुई है जो कि एक्चुअल बॉर्डर रेखा से कुछ क्षेत्र पहले इंस्टॉल्ड है, और किसानों को अपनी जमीनों पर जाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। बॉर्डर पर रहने वाले रंजीत सिंह एक किसान अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं,
सर मेरा खुद का 20 एकड़ जमीन पार के आगे है, तो हम आज सुबह गेट के पास गए थे तो हमको रोक दिया गया कि अभी 4-5 दिन गेट नहीं खुलेगा। उसकी वजह से हमारे जो खेतों में पानी देने का जो काम चल रहा था उसकी वजह पानी नहीं दे पाएंगे हम, तो हम खेतों का भारी नुकसान होगा।
कई जगहों पर रावी नदी गाँवों को दो जगह पे बांट देती है। किसानों को रावी नदी के पार रात गुजारने के लिए भी मना कर दिया गया है। सीमा पर रहने वाले किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, किंतु उन्होंने अपने घर के बुजुर्ग, बच्चों, औरतों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। खेमकरण सेक्टर के एक गांव के रहने वाले किसान रघुवीर सिंह कहते हैं,
लेकिन लोग अजे अज जी गल चली मूवमेंट जी कोई विरला ही कर रहे, बाकी सारे बैठे है।
बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव के चलते चाहे सरकारें दावे तो कर रही है, किंतु किसान अपने 6 महीने की मेहनत से पाली हुई फसल को बचाने की गुहार कर रहे हैं।
रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट। सार्क सम्मेलन स्थगित करने के फैसले के बाद पाकिस्तान में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, यही जानने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने इस्लामाबाद में BBC संवाददाता ताबिंदा कोकब से बात की।
जी, फ्राइडे को पाकिस्तान में जो सबसे अहम थी वो थी यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग, जिसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उसकी सदारत की है, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के लिए जो अमन है उसमें पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है अमन कायम रखने की, उसे यहाँ इसकी कमजोरी न समझा जाए, और अगर इंडिया किसी किस्म का कोई जारहाना कदम उठाता है तो उसका पाकिस्तान जो है वो उसको रोकने के लिए जरूरी इकदाम करेगा। और उसमें कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो बताया गया कि पाकिस्तान का जो तहफ्फुज है उसके लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में ये भी डिस्कस किया गया कि इंडिया की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जाने के दावे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि अगर मुल्क का दिफा करने का वक्त आता है तो पूरी कौम जो होगी वो फौज के साथ खड़ी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की कमेटी है, डिफेंस कमेटी है, उसकी भी मीटिंग होनी है आने वाले मंगल को, और उसके बाद बुध को पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन भी बुलाया गया है, जिसमें इसी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है इस पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद जो दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि UN में पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ पर डॉक्टर मलीहा लोधी हैं, उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून से मुलाकात की है, और वहाँ उन्होंने जो सूरत हाल है उस बारे में उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया है वो झूठा है, और जो सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ से बनती थी वो उन्होंने बताई है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने जो सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया है ये दरअसल सही नहीं था, क्योंकि ये वो वक्त था कि जिसमें अगर इंडिया आ जाता तो इसमें हम मुजाकरात कर सकते थे और ये बेहतरीन मौका था मुजाकरात करने का अगर किसी किस्म की जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा हुई थी। तो बैन की मून ने जवाबन पाकिस्तान से और इंडिया दोनों से ये मुतालबा किया है कि जो भी कशीदगी चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान उसे खत्म करें, और उन्होंने ये कहा कि अगर इस सिलसिले में उनकी कोई खिदमात उन्हें चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को तो वो इस मामले में मदद कर सकते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया था कि पाकिस्तान तो अक्वाम मुत्तहिदा का ऑब्जर्वर ग्रुप है, उसके साथ तआवुन करना चाहता है लेकिन इंडिया तआवुन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा है। शायद वो रेफर कर रहे थे जो यूएन का एक मिशन आना चाह रहा था कश्मीर की सूरत हाल देखने पर, उसको इंडिया ने इजाजत नहीं दी थी।
ताविंदा, जो सीमा के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति है?
जी, पाकिस्तान में भी सूरत हाल काफी टेंस है, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में, वर्किंग बाउंड्री के पास और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। जब इंडिया से ये खबरें आने शुरू हुई कि इंडिया ने अपने पंजाब के कुछ इलाकों से जो है शहरियों को, सिविलियंस को पीछे हटाना शुरू किया है, तो यहाँ पाकिस्तान में भी सेम सूरत हाल देखने में आई है। वहाँ जो शहरी हैं उन्हें शहरों से निकाला जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो वर्किंग बाउंड्री के इलाके हैं वहाँ पर 2-3 किलोमीटर के फासले पर जितने गांव बनते हैं वो पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 120 जो देहात लगते हैं उनमें से अभी 25 ऐसे हैं जिन्हें आरजी तौर पर खाली करा लिया गया है, लोग वहाँ से निकल आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अगर काम काज होता है तो वो अपने इलाकों में वापस आ जाते हैं और जब रात होती है तो वो वापस जो है महफूज इलाकों की तरफ जहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया वहाँ वो लोग दोबारा से आ जाते हैं।
ये थी बीबीसी उर्दू सेवा की संवाददाता ताविंदा कोकब। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर फिल्म उद्योग पर भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख सिनेमाघरों ने भारतीय फिल्में दिखानी बंद कर दी हैं। सिनेमाघरों ने इसे देश के सैन्य बलों के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है। वहीं फिल्म नगरी मुंबई में लोग इस मसले पर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई में काम देने पर रोक लगाने की मांग की। एमएनएस ने उन फिल्मों को रिलीज न होने देने की धमकी भी दी जिनमें पाकिस्तान के कलाकारों ने काम किया है। इसके बाद मुंबई में फिल्म कलाकारों के एक संघ ने भी पाकिस्तानी कलाकारों को काम न देने की वकालत की। इस बीच फिल्म अभिनेता सलमान खान ने शुक्रवार को कह दिया कि ये लोग कलाकार हैं न कि चरमपंथी। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने मशहूर शायर जावेद अख्तर से बात की और पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं।
सही बात यह है कि इसका जवाब किसी तरह से सिर्फ हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। ये जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। इस इशू की एक तरफ तो हिस्ट्री ये है कि ये जो एक कल्चरल एक्सचेंज रहा है इसमें ये सच्ची बात है कि हिंदुस्तान ने ज्यादा लार्ज हार्टेडनेस से काम किया है हमेशा, वे उनको बिल्कुल सराखों पे बिठाया गया, लेकिन उतना रेसिप्रोकेशन उधर से कभी नहीं हुआ। मतलब लता मंगेशकर और आशा भोसले और रफी और किशोर ये कितने पॉपुलर वहाँ के सिंगर, लता जी वर्शिप बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये कि उनका कभी परफॉर्मेंस तो वहाँ पब्लिक परफॉर्मेंस तो क्या पर्सनल भी नहीं हुआ। तो ये एक तो पलड़ा इसमें यूं गड़बड़ है। दूसरे क्या है कि देखिए हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उसको आए दिन यही मिलता है सुनने को कि साहब ये यहाँ हो गया, फिर वो उधर घुस गए, फिर वो पठानकोट में हो गया, फिर वो, तो उसके अंदर नेचुरली गुस्सा तो होगा ना। अब ये गुस्सा कहाँ निकले, वो कहता है कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, अब यह ना हमें इनके सिंगर चाहिए ना एक्टर चाहिए, इन सबको भगाइए यहाँ से। ये एक रिएक्शन बहुत लॉजिकल और बहुत कोहरेंट हो कि नहीं हो, मगर ये इसके पीछे जो इमोशन है उसे आपको समझना होगा। दूसरी तरफ से अगर आप इसे देखें तो फैक्ट ये है कि भाई कोई मुल्क मोनोलिथ तो होता नहीं। अब उस मुल्क की मिलिट्री की क्या पॉलिसी है, उस मुल्क की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, वो आम आदमी तो तय करता नहीं है। वो इंडिया से रिलेशन खराब नहीं रखना चाहता। अगर आप वहाँ रेफरेंडम करा दे कोई इस तरह का कि इंडिया से अच्छे रिलेशन खराब रखने, तो सिवाय फौज और सिवाय मुल्ला और सिवाय पॉलिटिशियन के कोई नहीं कहेगा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उड़ी का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं जताई, उस पर खामोश रहे।
अरे भाई अभी क्या होता है, हर आदमी के अंदर खौफ होते हैं, डर होते हैं, उन्हें वापस घर जाना है, वहाँ तो सड़क पे गोली मार देते हैं। वहाँ पर हाफिज सईद जैसे लोग जहाँ खुले घूम रहे हों वहाँ एक एवरेज सिटीजन की क्या फियर होगा, वो तो आप समझ सकते हैं ना।
जो चाहे कह दे वो, जो वो सही समझता है कह सकता है, ये पॉसिबल है वो तो। मगर ये क्या, अगर हम ये डिमांड करें तो हम, हमारी डिमांड भी जायज है कि हम कहें कि भैया इतना तो करो, कुछ नहीं कर सकते तो बोलो कि साहब ये जो है, ये जो फंडामेंटलिस्ट है, जो वहाँ के टेररिस्ट है, ये गलत है, खुल के बोलो, हमारी डिमांड गलत नहीं है। लेकिन उनका फेयर भी सही है अपनी जगह।
तो ऐसी स्थिति में कलाकारों के पास क्या रास्ता बचता है?
अब मुझे तो लगता है कि इस वक्त हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त तो माहौल इतना गर्म है, वो कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कितना रेडियो पे और टीवी पे डिस्कशन कर ले, लेकिन अभी कुछ दिनों तक तो ये मामला बंद रहेगा। थोड़े नॉर्मल हो जाए, आई होप हो जाए, बेहतर हो रिलेशन, तो फिर खुल जाएगा जो भी होगा। हमेशा तो पड़ोसी रहे, पड़ोसी नहीं बदल सकते आप, क्या कर सकते। लेकिन उसके साथ ये सजा अब कल आप करण जौहर को दे दे, उसका तो कोई धोटी गरीब का, उसने तो करोड़ों रुपए पिक्चर बनाई है, जो पाकिस्तानी एक्टर से अपना पैसा लेके चले गए।
ये थे मशहूर शायर जावेद अख्तर। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबार भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर क्या कुछ लिख रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ दिलनवाज पाशा स्टूडियो में हैं। जी दिलनवाज
जी। अमरीश, आज के अखबारों में भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा है वो साफ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ही तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें भारत प्रशासित कश्मीर के अखनूर सेक्टर में बढ़ती सैन्य गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और दोनों ही अखबारों ने लिखा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग, द्क्षे सम्मेलन से श्रीलंका भी बाहर। आपको बता दें ये सम्मेलन पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पहले पन्ने पर जो विस्थापित लोग हुए हैं उनके राहत कैंप ले जाने की एक तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें एक बच्चा गुब्बारे से खेल रहा है और डर जाहिर किया है कि कुछ चरमपंथी भारत में दाखिल हो सकता है, हो गए हैं, और इसके मद्देनज़र भारत ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी है। ये खबर लगभग सभी हिंदी अखबारों में है, जो चरमपंथी कथित तौर पर घुस आए हैं उनके खतरे को लेकर। और जो भारत के बड़े शहर हैं उनमें अगले 48 घंटे के लिए सुरक्षा चौकसी बेहद बढ़ा दी गई है। भारत के जो सरहदी गांव हैं उससे रिपोर्टें अखबारों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है सरहद पर तनाव लेकिन सेना के हर कदम का समर्थन। वहीं अमर उजाला ने शीर्षक दिया है पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाएं, फौज हमारी चिंता कतई ना करें। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो भारत का एक सैनिक पाकिस्तान में बताया जा रहा है उसके परिवार के बारे में लिखा और कहा है कि इस सैनिक की दादी का खबर सुनने के बाद जो है देहांत हो गया कि उनका जो सैनिक है वो चंदू जवाहान, इन सैनिक का नाम है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। वहीं एक और खबर आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जिसके मुताबिक भारत में पिछले 5 साल के दौरान बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ये तनाव से थोड़ा सा अलग खबर है, लेकिन जो लोग रोजगार तलाश रहे हैं शायद उनके लिए ये खबर तनावपूर्ण हो सकती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अखबारों की इस समीक्षा के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
नियंत्रण रेखा से पार जाकर चरमपंथियों को मारने का सेना ने किया दावा। क्या 3 दशकों से चले आ रहे कश्मीरी चरमपंथ को मिल गया जवाब? क्या अब नहीं होंगे भारत पर चरमपंथी हमले? इस बार इंडिया बोल में शनिवार 1 अक्टूबर को होगी इसी पर चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर शाम 7:30 बजे।
बीबीसी इंडिया बोल।
सीरिया के अलेप्पो में जारी लड़ाई के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ करने की कोशिशों में अमेरिका अलकायदा से जुड़े एक जिहादी समूह का बचाव कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
बीबीसी से खास बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने ताकतवर विद्रोही गुट जबाह फतह अल शाम और अन्य कट्टरपंथी गुटों को उदार विद्रोहियों से अलग करने के अपने वादे को तोड़ दिया है। जबाह फतह अल शाम समूह अलकायदा से जुड़ा है और इसे पहले अल नुस्र फ्रंट के नाम से जाना जाता था। सीरिया में रूसी हवाई अभियान का 1 साल पूरा होने पर लावरोव बीबीसी वर्ल्ड न्यूज टीवी के स्टीफन सॉकर से बात कर रहे थे। लावरोव ने कहा, कई बार के वादों और भरोसे के बावजूद उन्होंने अभी ने ऐसा किया है और न करने की इच्छा जाहिर की है, जिससे हमारे पास ये मानने के कारण हैं कि उनकी योजना शुरुआत से ही नुस्र को बचाए रखने की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर या जब सत्ता बदलने का समय आए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। हाल ही में रूस और अमरीका के बीच हुए समझौते के तहत रूस और अमरीका को इस्लामिक स्टेट और जबाह फतह अल शाम समूह पर साझा बमबारी थी, लेकिन अब अमेरिका समर्थित उदार विद्रोही गुटों ने अधिक ताकतवर जबह फताल शाम समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली है और वो उसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लावरोफ ने कहा,
We believe that the Russian-American deal must be put into effect.
हम मानते हैं कि रूस और अमेरिका के समझौते को लागू किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष को नुस्र से अलग किया जाए। यदि अमेरिका इसका कागजों के बजाय असल में समर्थन करता है तो हम तुरंत संघर्ष विराम पर जोर देंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा है कि रूस के आरोप बेतुके हैं। उन्होंने कहा,
Honestly, I saw those remarks. It left me shaking my head.
ईमानदारी से कहूं तो मैंने वो बयान देखा है, मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि इससे उनका क्या मतलब था। बस इतना ही कहूंगा कि मैं अनुमान ही लगा सकता हूं कि उनका इससे क्या मतलब है, लेकिन ये बेतुका है। मार्क टोनर ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने अल नुसर फ्रंट पर महीनों से इसलिए हमला नहीं किया है क्योंकि वो अन्य विद्रोही समूहों और नागरिकों में घुल मिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी बमबारी से रूस उदार विद्रोहियों को कट्टरपंथी गुटों के हाथों में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते सप्ताह घेराबंद शहर एलेपो में सीरिया और रूस की बमबारी में 400 नागरिक मारे गए हैं। गुरुवार को अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा था कि सीरिया को लेकर रूस और अमरीका की बातचीत नाकाम होने के कगार पर है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
इस हफ्ते रिलीज हुई भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। निर्देशक नीरज पांडे की यह फिल्म एक बायोपिक है जिसमें धोनी का किरदार निभा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म कैसी है ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान ने बात की फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी से।
अर्णव, आपको कितनी अनटोल्ड लगी धोनी की कहानी?
धोनी की कहानी जो रांची से शुरू होती है, वहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, उसके माँ बाप का ये सपना है कि वो एक नौकरी करे और लेकिन उसको क्रिकेट ना खेलना पड़े, वहाँ तक कहानी अनटोल्ड है, जो कि बहुत घरों में होती है। बहुत सारे जो सुपरस्टार्स बने हैं उनकी बैक स्टोरी होती है जो हम नहीं जानते हैं, और वो देखकर वास्तविकता देखकर हमें अच्छा लगता है क्योंकि बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो देखने में बहुत सहज लगती हैं लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल नज़र आता है।
नाम क्या है?
महेंद्र सिंह धोनी।
अच्छा गोलकीपिंग करता तू, क्रिकेट खेलेगा?
सर हमको क्रिकेट में बैटिंग ज्यादा अच्छा लगता है।
पहले विकेट कीपिंग पे ध्यान दो तुम, समझा?
सुशांत एस धोनी कितने कन्विंसिंग लगे आपको?
सुशांत सिंह कोशिश बहुत करते हैं, मुझे लगता है उनका स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है या उन्होंने इस तरह से एक्टिंग सीखी नहीं है, तो कहीं कहीं वो खरे नहीं उतर पाते हैं क्योंकि वो शायद लुक्स पे ध्यान देते हैं या अपने फिजिकल गेटअप में बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से धोनी नहीं बन पाते हैं, कैरेक्टर नहीं बन पाते हैं। बहरहाल जब कोई एक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश करे और वो कोशिश दिखाई देने लगे तो वो नाकामयाबी ही होती है।
धोनी का गेम दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है।
तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है?
परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है।
अरे एग्जाम तो दोगे ना तुम?
पास जितना लायक हो जाएगा।
फिल्म में धोनी का लव एंगल किसके साथ दिखाया गया अर्णव?
देखिए जो कुछ हमने पढ़ा है, अगर आप नेट खोल के देखें तो बहुत सारी घटनाएं हैं। एक उनका अफेयर था जो एक लड़की थी प्रियंका नाम की, वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसका जो पूरा प्रसंग है बहुत लंबा दिखाया है, यानी वो लड़की बहुत चार्मिंग है, एक दिशा पटानी करके एक नई लड़की है, वो बहुत लंबा उन्होंने रोमांस दिखाया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। फिल्म पूरी तरह बहुत स्ट्रेच्ड है, करीब 3 घंटे की फिल्म है जिसमें कि बहुत सारा अंश कुछ ऐसे मुद्दों पर उठाया गया है कि जो धोनी से जुड़ा हुआ हो सकता है लेकिन वो मुझे लगता है कि बेसिर पैर का है।
जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है?
ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है।
We are all servants and we are all doing national duty.
कोई सरप्राइज एलिमेंट जिसके लिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है?
देखिए मैं सरप्राइज देखने ही गया था, मुझे लगता था कि ऐसी जो कंट्रोवर्सी हुई है, धोनी बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं, क्रिकेटर कैप्टन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसी जो कंट्रोवर्सी है जिसको लेके हम जानना चाहते हैं या और जो बड़े बड़े उनके साथ जो लेजेंड्स सौरभ गांगुली हों या सचिन तेंदुलकर हों उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई वो अगर नीरज पांडे उन पे अगर थोड़ा बहुत भी तवज्जो डालते तो फिल्म जो अनटोल्ड है वो हमें पसंद आती।
फाइनली धोनी को कितने रन्स दोगे?
फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ पूरा जो है धोनी के क्रिकेटिंग करियर पर है। कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको, क्योंकि अभी नई नई बात है, 10 साल पुरानी है शायद मुशर्रफ का उनका बयान, उनके बालों के बारे में कहना, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही वास्तविक से दूर है, इसकी वजह से मैं धोनी को, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी को 5 में से 2 दूंगा।
ये तो थे फिल्मी अंपायर अर्णब बनर्जी। अब जानते हैं कि स्टेडियम में बैठी, सिनेमा हॉल से उठकर निकली क्राउड, वो क्या कहती है धोनी के लिए? धोनी के लिए चीयर किया या अपना टिकट टियर किया?
मुझे धोनी की लाइफ के बारे में जानने का बहुत शौक था। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आया हूँ, काफी जानकारी मिली।
अच्छी परफॉर्म किया उन्होंने, जैसे लग रहा है कि हम सचिन महेंद्र सिंह धोनी को ही हम देख रहे हैं।
इस फिल्म में ना ज्यादा ड्रामा नहीं किया दिखाने का तरीके को, तो मुझे वो अच्छा लगा।
धोनी की फिल्म को मैं 3 स्टार दूंगा।
मैं धोनी फिल्म को 5 में से 5 देना चाहूंगा।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय तक 7 विकेट खोकर 239 रन बनाए। स्टंप के समय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साह चौथ हैं और रविंद्र जडेजा बिना कोई रन बनाए खेल रहे थे। भारत ने अपनी टीम में 2 परिवर्तन किए। चोटिल सलामी बल्लेबाज KL राहुल की जगह शिखर धवन और उमेश यादव की जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया। जब टीम का स्कोर केवल 1 रन था, तब शिखर धवन मैट हेनरी की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर कट करने की कोशिश में बोल्ड हो गए। गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा लेकर उनका स्टंप ले उड़ी, वो केवल 1 रन बना सके। उसके बाद मैट हेनरी का ही अगला शिकार मुरली विजय बने। उनकी स्विंग लेती गेंद ने मुरली विजय के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधे विकेटकीपर वाटलिंग के दस्तानों में समा गई। कप्तान विराट कोहली भी अधिक देर नहीं टिक सके और वो केवल 9 रन बनाकर गली में खड़े टॉम लेथम को कैच दे बैठे। इसके बाद मोर्चा संभाला चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी हुई। पुजारा आखिरकार 17 चौकों की मदद से 87 और अजिंक्य रहाणे 11 चौकों की मदद से 77 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा वेगनर और रहाणे जीतन पटेल का शिकार बने। बाद में अजिंक्य रहाणे ने स्वीकार किया कि वो खुद और पुजारा अपने स्कोर को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।
Me and Pujara will take this blame because we were set. He got out on 87, I got out on 77. दोनों में से किसी ने 100 बनाया होता तो शायद हमारी पोजीशन आज अलग होती। So किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ मैं, बट शायद मेरा और पुजारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम वो पार्टनरशिप आगे लेके जाए।
पुजारा और रहाणे के बाद रोहित शर्मा केवल 2 और आर अश्विन 26 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 35 रन देकर 3 और जीतन पटेल ने 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उल्लेखनीय है कि ये भारत का अपनी ही सरजमी पर खेला जा रहा 250वां टेस्ट मैच है। वहीं भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सानिया बारबोरा ने 3री वरीयता हासिल हंगरी की टीमिया बाबोस और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेवेदोवा को 6-3, 7-6 से मात दी। उधर भारतीय हॉकी टीम ने ढाका में खेले गए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट को जीत लिया। फाइनल में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 5-4 से मात दी।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव के कारण दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के प्रमुख सिनेमाघरों ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने रूस के उन आरोपों को बेतुका बताया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका सीरिया में सक्रिय कट्टरपंथी जिहादी समूहों को बचा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 10 दिन पहले सीरिया में राहत सामग्री ले जा रहे काफिले पर हुए हमले के मामले में जांच बिठा दी है। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में पुलिस ने मंगलवार को एक शॉपिंग सेंटर में निहत्थे काले युवक की पुलिस के हाथों मौत के मामले का वीडियो जारी किया है और मैक्सिको के अधिकारियों के मुताबिक एक सैन्य काफिले पर ड्रग अपराधियों के हमले में 5 सैनिक मारे गए हैं और 10 अन्य घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इसका कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।